लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'apostolo Paolo con la sua lettera ai Galati poco alla volta ci introduce nel grande novità della fede.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। प्रेरित संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र में विश्वास की नवीनता के बारे में कहते हैं। यह सचमुच एक बहुत बड़ी नवीनता है। यह हम में वह नया जीवन लाता है जिसे हमने बपतिस्मा संस्कार में प्राप्त किया है। यहाँ हम अपने लिए उस महानतम उपहार को पाते हैं जो हमें ईश्वर की संतान बनाता है। ख्रिस्त में हमारा नया जन्म हमें संहिता की धार्मिकता से उस सजीव विश्वास में बढ़ने को मदद करता है जिसका केंद्र बिंदु ईश्वर है, जिसके फलस्वरूप हम अपने को अपने भाई बहनों से संयुक्त करते हैं। इस भांति हम भय की गुलामी और पाप से स्वतंत्र होकर ईश्वर की संतान बनते हैं। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेरित के हृदय में इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। संत पापा ने कहा, संत पौलुस कहते हैं कि यह शरीर के लिए एक अवसर के अलावा और कुछ नहीं है, अर्थात शारीरिक रूप में या भावनाओं और अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यीशु ख्रिस्त में मिली स्वतंत्रता, जैसे कि संत पौलुस लिखते हैं, दूसरों की सेवा हेतु अग्रसर करती है। संत पापा ने कहा कि लेकिन यह तो एक गुलामी है। यीशु ख्रिस्त में स्वतंत्रता के आयाम में हम गुलामी को पाते जो हमें दूसरों की सेवा करने का आह्वान करता है।
La vera libertà, in altre parole, si esprime pienamente nella carità.
यीशु ख्रिस्त में सच्ची स्वतंत्रता, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो, अपने को करुणा में व्यक्त करती है। यहाँ हम पुनः सुसमाचार के विरोधाभास को पाते हैं। हम सेवा करने के द्वारा अपने को पूर्ण स्वतंत्रता में पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम जो चाहें करें। हमारी स्वतंत्रता का मापदंड अपने को पूर्ण रूपेण दूसरों को देने में है। हम साहस में अपने को दूसरों के लिए देते हुए जीवन प्राप्त करते हैं। यही सही सुसमाचार है। संत पापा ने कहा कि हम इस विरोधाभाव का उल्लेख कैसे कर सकते हैं, यह क्यों विरोधाभाव है। भ्रातृत्व प्रेम से संबंधित प्रेरित का उत्तर उतना ही सहज है जितना कि यह चुनौतीपूर्ण है। प्रेम के अभाव में हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। अपने स्वार्थ में जो हमें अच्छा लगता उसे करते जाना स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि यह अपने में केंद्रित है जो फलहित नहीं होता है। यह ईश्वर का प्रेम है जहां हम अपने को स्वतंत्र पाते हैं, और यह वह प्रेम है जो हमें बदतर गुलामी से मुक्त करता है जहां हम स्वयं तक ही सीमित नहीं रहते हैं। अतः स्वतंत्रता का विकास प्रेम में होता है, लेकिन हम सावधान रहें। संत पापा ने कहा,
Ma attenzione, non con l'amore intimistico, con l'amore da telenovela, non con la passione che ricerca semplicemente quello che ci va e ci piace.
यह धारावाहिक अंतरंग प्रेम नहीं जहां हम अपनी भावनाओं को किसी भी रूप में पूरा करने की चाह रखते हैं। यह वह प्रेम नहीं है बल्कि यह यीशु ख्रिस्त का वह करुणामय प्रेम है जो हमें सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और मुक्त करता है। यह वह प्रेम है जो शर्तहीन सेवा में प्रदीप्त होता है, जो यीशु में अपनी प्रकाष्ठा को पहुंचता है, जो अपने चेलों के पैर धोते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है जिससे तुम वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि संत पौलुस के लिए इस भांति स्वतंत्रता उन सारे चीजों को करना नहीं जिसे वे चाहते और पसंद करते हैं। इस तरह की स्वतंत्रता उद्देश्यहीन और बिना किसी संदर्भ के होती है, जो अपने में एक व्यर्थ स्वतंत्रता है। वास्तव में ऐसी स्वतंत्रता हमें आंतरिक रूप में खालीपन का एहसास दिलाती है। कितनी बार केवल अपनी सहज बुद्धि का अनुसरण करने के कारण हम आंतरिक रूप में एक वृहद खालीपन का अनुभव करते हैं और साथ ही हम यह एहसास करते कि हमने अपनी स्वतंत्रता रूपी निधि का दुरुपयोग किया है। वहीं दूसरों के लिए अच्छाई का सच्चा चुनाव करना हमें अपनी पूर्ण सच्ची स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है।
Solo questa libertà è piena, concreta e ci inserisce nella vita reale di ogni giorno.
केवल यही स्वतंत्रता हमारे लिए पूर्ण और ठोस है जो हमारे रोज दिन के जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में संत पौलुस उन लोगों को अपना उत्तर देते जो झूठी स्वतंत्रता का प्रचार करते हैं। सभी चीजें वैध हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। नहीं, यह एक भ्रमित विचार है। संत पौलुस कहते हैं कि सभी चीजें वैध हैं, लेकिन सभी चीजें लाभदायक नहीं हैं। वे पुनः कहते हैं, सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। यह किसी भी स्वार्थपूर्ण स्वतंत्रता का पर्दाफाश करने हेतु नियम है। वे जिन्होंने स्वतंत्रता का उपयोग अपनी ही सुखद इच्छाओं की प्राप्ति हेतु की, उनके लिए संत पौलुस ने प्रेम की आवश्यकता पर बल दिया। केवल प्रेम से उत्प्रेरित स्वतंत्रता ही हमें और दूसरों को स्वतंत्र करती है। यह दूसरों पर दबाव डाले बिना उनकी बातों को सुनना है। यह अपनी सुविधा के लिए दूसरों का शोषण नहीं करता और अपने लाभ की चाह रखे बिना दूसरों की भलाई खोजता है।
Se la libertà non è a servizio del bene, rischia di essere sterile e non portare frutto.
संक्षेप में, यदि स्वतंत्रता भलाई हेतु नहीं होती तो यह अपने में बंजर हो जाती और कोई फल उत्पन्न नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर प्रेम से प्रेरित स्वतंत्रता गरीबों की ओर अग्रसर होती है, उनमें ख्रीस्त के चेहरे को पहचानती है। अतः गलातियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस इस बात की चर्चा करते हैं कि हमें दरिद्रों की सुधि लेनी है। मेरी स्वतंत्रता की इति वहाँ होती जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता के इस आधुनिक विचार की चर्चा करते हुए संत पापा ने कहा कि यहाँ हम संबंध के अभाव को पाते हैं। यह एक व्यक्तिगतवाद दर्शन है।
Invece chi ha ricevuto il dono della liberazione operata da Gesù non può pensare che la libertà consista nello stare lontano dagli altri.
जिन्होंने यीशु ख्रीस्त से मिली स्वतंत्रता के उपहार को पाया है, वे अपने को दूसरों से तटस्थ रखने की बात नहीं सोच सकते हैं, मानो वे उनके लिए एक सिर दर्द हों। मानव अपने में बंद नहीं रह सकता है, बल्कि वह सदैव समुदाय का एक अंग है। सामाजिक आयाम ख्रिस्तियों के लिए अहम है, जो सबों की भलाई का ख्याल रखते हैं, न कि व्यक्तिगत चाह की आस करते। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इस ऐतिहासिक समय में हमें सामुदायिकता की खोज करनी है, न कि व्यक्तिकरण की। हमारी स्वतंत्रता के आयाम ने इस महामारी के समय में हमें एक दूसरे की जरूरत का पाठ पढ़ाया है, लेकिन केवल इसे जानना काफी नहीं है। हमें इसे ठोस रूप में रोज दिन जीने की आवश्यकता है। हम इस बात को घोषित करते हुए विश्वास करें कि दूसरे हमारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते हैं, बल्कि वे हमें इसे पूर्ण रूपेण अनुभव करने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता ईश्वरीय प्रेम में पनपती और करुणा में विकसित होती है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया,
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आम दर्शन समारोह में गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से अपनी धर्म शिक्षा जारी रखी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ख्रिस्तीय स्वतंत्रता दूसरों की सेवा करने में व्यक्त की जाती है। इसी के मद्देनजर उन्होंने ट्वीट कर दूसरों की सेवा करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, सच्ची स्वतंत्रता मसीह में स्वतंत्रता व्यक्तिगत हितों की तलाश नहीं करती, लेकिन प्रेम द्वारा निर्देशित होती है और दूसरों की सेवा में व्यक्त की जाती है, विशेष रूप से गरीबों की सेवा में। प्रेम हमें स्वतंत्र बनाता है, यह हमें चुनने और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, यह हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। और संत पापा के प्रार्थना ऐप का नया और अद्यतन संस्करण विश्वासियों को धर्म सभा कलीसिया के लिए प्रार्थना करने में मदद करता है। क्लिक टू प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए क्लिक करें 2.0 एक अद्यतन डिजिटल प्रस्ताव है, जिसे iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क द्वारा लॉन्च किया गया ऐप उपयोगकर्ताओं को दैनिक आधार पर संत पापा फ्रांसिस के साथ प्रार्थना करने और धर्म सभा प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रस्ताव प्रदान करता है। धर्माध्यक्षों की धर्म सभा के सामान्य सचिवालय और वरिष्ठ जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से प्रार्थना करने के लिए क्लिक करें नेटवर्क द्वारा वाटिकन प्रेस कार्यालय में मंगलवार को शुरू किया गया। यह धर्म सभा यात्रा कार्यक्रम की प्रार्थना और संगत के लिए नई सामग्री प्रस्तावित करता है। संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक फादर फ्रेडरिक फोर्नोस एसजे ने कहा, जैसा कि संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, कलीसिया के मिशन का दिल प्रार्थना है और इस कारण से प्रार्थना करने के लिए क्लिक करें का उद्देश्य प्रभु के साथ व्यक्तिगत मुलाकात का स्थान बनना और डिजिटल प्रार्थना का एक विश्वव्यापी समुदाय बनाना है। संचार विभाग के सचिव मोनसिन्योर लुचियो रुइज ने कहा कि कोविड-19 महामारी से सीखे गए पाठों में से एक यह है कि डिजिटल संस्कृति में बहुत कुछ है। पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचने और उनका साथ देने के लिए, चाहे वे जहां कहीं भी हों, उनमें वे भी शामिल हैं जो खुद को भौगोलिक और अस्तित्वगत परिधि में पाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, कि पिछले कुछ वर्षों में संत पापा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अनुयायियों की काफी वृद्धि हो गई है। 7 भाषाओं में उपलब्ध प्रार्थना के लिए क्लिक करें का उद्देश्य एक साझा सामुदायिक स्थान उत्पन्न करने का मौका देकर उपयोगकर्ताओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और पीढ़ियों के बीच एक सेतु प्रदान करना है, जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने मतलबों को प्रकाशित कर सकता है और पूरे नेटवर्क में प्रार्थना साझा कर सकता है। इसमें अधिक गहन स्तर पर प्रार्थना का अनुभव करने के लिए एक शिक्षण उपकरण भी शामिल है। उधर फ्रांस और वाटिकन के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 100 साल पूरा होने पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स और वाटिकन राज्य सचिव ने गोलमेज चर्चा के लिए विल्ला वर्नापोर्ट में मुलाकात की। राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने 17 वर्षों के अंतराल के बाद मई 2021 में फ्रांस और वाटिकन के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना की शताब्दी को याद किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से 20वीं शताब्दी की मोड़ पर इन संबंधों के अशांत इतिहास को याद करते हुए कहा, यह एक लंबे इतिहास की आखिरी सीधी रेखा है। 1921 से सौहार्दपूर्ण माहौल ने दोनों के बीच संबंधों की विशेषता बनाई है। उन्होंने कहा, यह वाटिकन और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच समय के साथ निरंतर निसंदेह पारस्परिक सम्मान का प्रमाण है। यह फ्रांस में कलीसिया द्वारा राज्य और उसकी धर्म निरपेक्षता के प्रति एक अलग दृष्टिकोण भी है। फ्रांस में सौवे आयोग की रिपोर्ट की प्रकाशन के मद्देनजर गोलमेज चर्चा ने दुरुपयोग के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया। कार्डिनल पारोलिन ने पुष्टि की कि फ्रांस में कलीसिया की प्रतिबद्धता नागरिक अधिकारों के पूर्ण सहयोग से प्रकृति मिशन और कलीसिया की धार्मिक संरचना का सम्मान करते हुए जो इसके लिए उचित है और भी मजबूत और दृढ़ होगी। इस पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि आवश्यक उत्तर खोजना अब कलीसिया पर निर्भर करता है, लेकिन कलीसिया और राज्य का अलगाव किसी भी तरह से कलीसिया और कानून का अलगाव नहीं है। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने जोर देकर कहा कि एक सदी से अधिक समय तक परम धर्म पीठ ने फ्रांस में भी परोक्ष रूप से घृणा और विभाजन के बीज को बढ़ावा देने से लगातार परहेज किया है। उन्होंने संत पापा लियो 13वें के 1892 के फ्रांसीसी कैथलिकों को गणतंत्र में शामिल होने के निमंत्रण को भी याद किया। कार्डिनल पारोलिन धर्म निरपेक्षता के प्रश्न में गहराई से जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के शब्दों का जिक्र किया जो एक अच्छे धर्म निरपेक्ष यूरोप का सपना देखते हैं, जहां ईश्वर और सीजर अलग हैं, लेकिन विरोधी भी नहीं हैं। हालांकि फ्रांसीसी सरकार के प्रमुख ने इस मुद्दे पर विस्तार से बताया कि 1905 के कानून ने वास्तव में गैलिकनवाद की 7 शताब्दियों को समाप्त कर दिया था, इस प्रकार कलीसिया की पूर्ण स्वतंत्रता को बहाल किया। उन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्षता को किसी क्वालिफायर की आवश्यकता नहीं है। उधर जलवायु परिवर्तन के लिए ऑस्ट्रेलियाई धर्मसंघियों की प्रतिक्रिया ने 17 और 18 अक्टूबर 2 दिवसीय पहल का आयोजन किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान किया है। जैसा कि COP26 की बैठक नजदीक आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के धार्मिक समुदायों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से सृष्टि की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया कोयले और गैस का एक बड़ा उत्पादक है और इसकी जलवायु नीतियों और उत्सर्जन में कमी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में सबसे खराब स्थान दिया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।